चलिए तफसीर देखते हैं, आयत नंबर 36 36 से। वाबुदु अल्लाह वला तुशरिकु बिही शैयं वबिल वालिदैन इहसानं वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ذِل क़ुरबा والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا। और बंदगी करो अल्लाह की और ना शरीक करो इसका किसी को, और माँ बाप के साथ नेकी करो और कराबत वालों के साथ और यतीमों और फ़कीरों और हमसाए जो करीब के हैं और वो हमसाए जो दूर के हैं यानी अजनबी, और पास बैठने वालों और मुसाफिरों के साथ और अपने हाथ के माल यानी ग़ुलाम और बांदियों के साथ अच्छा सलूक करो, यानी बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता इतराने वाले और बड़ाई करने वाले को। यहाँ से आप देखिए कि एकदम टॉपिक बदल गया। अगर पिछली आयतों के साथ इसका हम रब देख लें तो सूरत निसा के आगाज़ से ही हमने हुकूकुल इबाद को देखा और आदम और हव्वा के ज़रिए हमें ये बता दिया गया कि तुम सब असल में एक ही हो और अल्लाह ताला ने तुमको एक ही जगह से पैदा किया। फिर उसके बाद औरतों और यतीमों के हकूक़ की बात हुई, बीच में विरासत की बात के बाद कुछ बातें औरत और मर्द के आपस के ताल्लुकात की हुई, और आप कह सकते हैं कि शौहर और बीवी के हकूक़ पे बात करने के बाद अब यहाँ अल्लाह सुबहान ताला एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, और वो क्या है कि जिस तरीके से आपस में ताल्लुकात में मुआशरे में रहते हुए शौहर और बीवी के साथ ताल्लुकात के अंदर तुम हद रखते हो या उसका फ़िक्र करते हो, तो याद रखो कि तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ घर और घरवाली से नहीं है बल्कि तुम्हारा रिश्ता खालिक से भी है, अल्लाह के साथ भी है। तो यहाँ अब तरतीब के साथ अल्लाह ताला हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की बात करते हैं, जो कुरान पाक में कई जगह आती है और मुख्तलिफ मुकामात पे इसमें मुख्तलिफ तरह से बात होती है, लेकिन यहाँ ये पता चल गया कि सबसे ऊपर अगर किसी का हक है तो वो अल्लाह का हक है। जो अल्लाह के साथ दुरुस्त होगा ना वो हर मामले में दुरुस्त होगा, जो अल्लाह का हक नहीं पहचानता वो हर एक की हक तलफी कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि वाबुदुल्लाह और इबादत करो अल्लाह की। लफ्ज़ वा को देखिएगा तो इसका ताल्लुक है पीछे से, पीछे बात हो रही थी शोहर बीवी के बीच में समझौते की, उनके साथ अच्छा मामला करने की, और फरमाया कि ऐसे मामलात के साथ साथ अब वाबुदुल्लाह अल्लाह की भी बंदगी इख्तियार करो। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जब इस तरह के बिगाड़ पैदा होते हैं तो उसके बाद वाकई नमाजें तक ज़ाया होने लगती हैं, इस तरह की मीटिंग्स चल रही हैं और इस तरह के समझौते हो रहे हैं, एक इधर से आ रहा है एक उधर से आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, नतीजे में नमाजें भी पीछे होने लगती हैं। फिर दूसरा इस आयत का वाबुदुल्लाह का रब्त अगर आप पीछे से देखें तो बंदगी के जो हमने तीन मानी सूरत फातिहा में देखे थे, परस्तिश एतात और ग़ुलामी, तो इसमें से अगर हम देखें कि पीछे वाली सारी बातों को करने और कराने के दौरान एक बहुत शिर्क खफ़ी कह लें लेकिन शिर्क हो जाता है, और वो क्या है कि लोगों का डर इतना गालिब आता है कि इस तरह के निजी मामलात में हम अल्लाह से डरने की बजाय लोगों से डर कर गलत फ़ैसले कर लेते हैं, या तो हराम और हलाल का फ़र्क मिटाए बग़ैर हम वही ज़िंदगी बसर करते रहते हैं, और या फिर हम लोगों के खौफ की वजह से शिर्क का शिकार हो जाते हैं, रियाकारी की तरफ चल पड़ते हैं, दिखावे के लिए बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं सुलह के और ऐसी बातों के, और हर फरीक अपने आप को यही साबित कर रहा होता है कि मैं बहुत संजीदा हूँ और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इस्लाह की लेकिन दूसरी तरफ से ये नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, वाबुदुल्लाह अल्लाह का हक दो, नमाजों को पढ़ो, इस मामले में अल्लाह ताला की दी हुई रहनुमाई से फ़ायदा उठाओ। वला तुशरिकु बिही शैया और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, अल्लाह ताला के साथ किसी का मामला न रखो। और यही बात हम सूरत बकरा में शुरू में भी पढ़ चुके कि किस तरीके से शिर्क इंसान की ज़िंदगी के अंदर दाखिल होता है और इंसान फिर उसको महसूस भी नहीं कर पाता, और इसी पे बात अभी चंद आयात के बाद आगे भी आने वाली है, इसलिए हम इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह वहाँ देख लेंगे। यहाँ हकूकुल्लाह की बात के बाद अब जो बात हुई इंसानी हकूक़ के मामलात में, वो सबसे पहले वबिल वालिदैनी एहसाना और वालदैन के साथ एहसान करो। आप कह सकते हैं कि ये उम्महातुल आयात है, यानी इनके अंदर ऐसी आयात में قرآن پاک میں کافی جگہ ایسا مضمون ملتا ہے کہ ایک ہی آیت میں ریمائنڈر کے طور پر ساری چیزوں کو ڈسکس کر دیا جاتا ہے. اور والدین کے ساتھ احسان کی باتیں ہم پیچھے پڑ چکے کہ کس طریقے سے انسان کے اوپر انسانوں میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے, کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ تکلیف سہی ہوتی ہے. اور اسلام کا ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھیے گا, جس نے جس چیز کے لیے جتنی تکلیف سہی ہے نا, تو اس کو اس کا ریوارڈ اور اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا خوف دلایا, انسانی معاملات میں درستگی آ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دیا جائے, تقویٰ نہ ہو. جو بندہ مشرک ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں سے ڈرتا ہے. کہا کہ ایسا بندہ جو اللہ کا حق نہ دے گا وہ ماں باپ کا حق کہاں سے دے گا, اور ماں باپ چونکہ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں اس لیے ان کا حق مخلوق میں سب سے اوپر ہے. سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے ایک جگہ کہ نشکر لی ولی والدی کا, کہ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو. اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اس ماں باپ پہ بات آئے گی, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا, اس میں کچھ اس طرح سے بات آتی ہے کہ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے اوپر ایک دو روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو اس چیز سے زیادہ فائدہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت معاذ کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں کی, ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے, اور دوسرے یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو اگرچہ وہ حکم دیں کہ تم اپنے اہل اور مال کو چھوڑ دو. یہ مسند احمد کی روایت ہے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے. اور ترمذی کی ایک روایت ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اور ایک اور روایت ہے بیہقی کی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہو اور جب اپنے والدین کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھے تو ہر نظر میں اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. اور صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر دن میں کئی بار دیکھوں, دو بار دیکھوں, چار بار دیکھوں, تو کہا اگر 100 بار بھی دیکھو گے تو تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے تھکتا نہیں. تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. چلیں آپ نہ کریں تو آپ اپنے ماں باپ کے ناطے سے خود کو دیکھ لیں, تو پیار سے ماں باپ کو دیکھنا کیا مشکل ہے, اور خاص طور پہ جن کے ماں باپ ان کے پاس ہوں جن کو وہ دیکھ سکیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو ایک بیلنسڈ قسم کا انسان بناتے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد میں دونوں کی بات. اب یہاں والدین کا تذکرہ کرنے کے بعد اگلی چیز جس کا حکم ہے وہ کیا ہے, وہ بھی ذی القربیٰ, قرابت والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ساتھ ہی یتامہ والمساکین والجار ذی القربیٰ کی بات ہو گئی. یہاں آپ دیکھیے کہ ذی القربیٰ کی بات دو طرح سے ہو گئی, ایک عام رشتہ دار, اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں, اور سورۃ نساء کی پہلی آیت میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کر چکے کہ صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے. اسی طرح ایک اور آیت سورۃ نحل میں غالباً آتی ہے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ, کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سب کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے, اور یتیم اور مسکین تو کسی بھی معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تو وہی سلوک کرے گا اچھا جس کو اللہ کا خوف ہوگا, کیونکہ عموماً جن کے ماں باپ سامنے ہوتے ہیں ان بچوں سے محبت کرنا آسان لگتا ہے, لیکن جب ماں باپ نہ ہوں تو پھر اس بچے سے پیار کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. پھر اب دیکھیے یہاں جار کا لفظ ہے, جور سے ہے یہ, جیم و را اس کو کہتے ہیں, اسی سے لفظ جویریہ بھی ہے, جویریہ ہمسائی کو کہتے ہیں عربی میں. اردو میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جوار رحمت, رحمت کے سائے میں ہونا, تو وہ بھی اسی سے ہے لفظ, تو اس کو بھی یہاں سامنے سمجھا جا سکتا ہے. یہاں مراد ہے نیبرز, جو کہ آپ کے رشتہ دار ہیں, لیکن کون سے نیبر, جو یعنی ہمسائے بھی ہیں اور ذی القربیٰ. یہ عموماً کب ہوتا ہے, جب کوئی ایک خاص کمیونٹی ہے, وہاں ایک چچا کا گھر ہے, ایک ماموں کا, ایک پھپھی کا ہے, اور ایک پوری کالونی جو ہے وہ آپ کی بن گئی ہے, یہ اس صورت میں ہے. لیکن والجار الجنب, کچھ اجنبی ہمسائے ہوتے ہیں, عموماً ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو وہ مسلم بھی نہیں ہو رہے ہوتے. اور تیسرے وہ صاحب بالجنبی, یہ کون ہے, اس کے بارے میں دو تین مختلف لوگ ملتے ہیں. पहली बात तो यह है कि बास कहते हैं कि जारिद जुनूब से वो पड़ोसी मुराद है जो तुम्हारे मकान से कुछ फासले पर रहता हो, ठीक है, यानी थोड़ा दूर है, जिसको आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल करीब नहीं है, ठीक है। और ये जो साहिब बिल जम है, इसमें एक इससे मुराद लिया गया बीवी, क्योंकि बीवी करवटों की साथी भी होती है और इंसान का ज़्यादा वक्त जो है वो घर में अगर देखा जाए तो बीवी ही के साथ गुजरता है। साहिब बिल जम के अंदर हर वो बंदा जो आपके साथ बैठता है, यानी इस वक्त अगर आप कुरान की क्लास में है ना, तो आपके साथ जो बैठी हुई है ना, वो आपकी करवट की साथी हैं। हमें इनका हक क्या देना है? चलें इसी को प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो साथ बैठने वालों का क्या हक है? पहली बात है कि उनकी जगह ना ले ली जाए, फिर दूसरी बात है कि अपनी तहारत का इख्तमाम किया जाए। अगर एक इंसान के जिस्म से पसीने की बू आए तो दूसरा जो उसके साथ बैठा हुआ है उसका कितना मुश्किल हो जाएगा ना वहाँ बैठना। फिर इसी तरह ब्रश करना या पेस्ट लगाना या मिसवाक करना, क्योंकि जब इंसान बात करता है और बड़ी करीब होकर बात करता है तो बाज़ दफ़ा मुँह की बास होती है, उससे अवॉइड करना चाहिए। फिर इसी तरह आप लोग चूंकि यहाँ पर लिख भी रहे होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखें कि आप दूसरों के नोट्स अगर देख रहे हैं और दूसरा उससे पजल हो रहा है या आपकी वजह से उसको लिखना मुश्किल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला कितना हक दिखाते हैं, हत्ता कि कोई बस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, किसी के साथ आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और तीन चार लोग हैं, तो गाड़ी में आप खूब जगह ले लें, खुले होकर बैठे और दूसरे को तंग करें, मुश्किल है ना। बाज़ रिवायतों में आता है कि किसी इंसान के अखलाक का पता ही तब चलता है जब उसके साथ कोई सफ़र करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक दफ़ा किसी ने आकर किसी शख्स की तारीफ़ की, तो कहने कि तुम उसकी तारीफ़ कैसे करते हो, क्या तुम्हारा कभी उससे कोई मामला पड़ा? कहा नहीं पड़ा। कहा कभी उसके साथ सफ़र किया? कहा सफ़र भी नहीं किया। तो कहा फिर तुम्हें पता ही नहीं वो है क्या? देखिए जब कहते हैं ना मामला पड़ता है तो फिर पता चलता है ना बंदा किस कहले पर क्या। बातें करने में तो बहुत लोग अच्छे होते हैं, लेकिन जब अमली ज़िंदगी में आते हैं तो मुश्किलात होती हैं। तो हमें अपने लिए इस चीज़ में अमल की यही बात लेनी चाहिए कि किसी के पास हल्का सा भी आपका गुजर हो जाए तो उसको तकलीफ़ ना दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक के हक रखे। वबन सबील का लफ्ज़ आगे अलग से भी आ गया, ये तो ख़ास तौर पर मुसाफिर हैं जो ट्रेवलर्स होते हैं। पहले दौर में लोग घोड़ों पे और ऊँटों पे सफ़र करते थे, आज के दौर में इसमें आप बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूँ तो मसलन आप देखिए कि आप जहाज़ में बैठे हुए हैं ना, आपको पता है कि जहाज़ में उन लोगों ने हर चीज़ लिमिटेड और काउंटेड रखी होती है, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी वहाँ आपके पास स्टोरेज तो नहीं होगी ना। अब उन्होंने सब मुसाफिरों की नीयत से कैंडीज रखी हुई है, थोड़ी बहुत ऊपर ज़्यादा डाली होंगी, और वो आके आपको शुरू में सर्व कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? एक ले लें, दिल चाह रहा है ज़्यादा लेने का पूछ लें, एक और ले सकती हूँ। हाँ लेकिन अगर आप पूरी बास्केट ही पकड़ लें कि ये तो सारी मेरी हो गई, दुरुस्त नहीं ना। बाज़ लोग जान जान के चीज़ें ऑर्डर करते रहते हैं, और ड्रिंक लेके आओ, ये करो वो करो, और बाज़ लोग तो जहाज़ में बैठने का नाम ही ये समझते हैं कि खाना पीना। मैंने खुद एक मौके पर ऐसा देखा कि अभी जहाज़ रनवे पे था और अभी डोर भी शायद खुले ही होंगे, तो बेचारे एक ब्रदर थे तो उन्होंने बेल बजाई ना, तो एयर होस्टेस से ही तो कहने के चाय लेके आओ, उन्होंने कहा कि जहाज़ को बंद तो होने दें। यानी बस दफ़ा लोग ये रोब भी डालना चाहते हैं ना कि हमने ये कहा और वो किया, तो ये छोटे छोटे मामला थे ज़िंदगी में, इसका गौर करना चाहिए। सब मिलके पिकनिक पे गए हैं, अब सब ने मुख्तसर सी चीज़ें रखी हुई हैं, तो फिर दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और मुसाफिर में और भी बहुत कुछ है, किसी की जेब कट गई, उसको पैसों की ज़रूरत है, उसका टिकट नहीं है, कुछ भी है, तो उसकी मदद की जा सकती है। आपने फरमाया कि बाज़ दफ़ा घर में इंसान के बहुत भी होता है, लेकिन सफ़र में वो इस हद तक भी मुहताज हो सकता है कि आपको उसको ज़कात के मामले से भी देना पड़ता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि किसी को ऐसी मुश्किल और आजमाइश में ना डाले, लेकिन इससे आप देखिए कि इस्लाम किस किस के हकूक़ की बात करता है। फिर उसके बाद आगे फरमाया, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे हाथ के माल हैं, यानी गुलाम और लौंडियाँ, आज के दौर में गुलाम और लौंडियाँ तो नहीं हैं, हम अपने अमल के लिए इधर अपने घर के मुलाजमीन की बात कर सकते हैं। हर बंदा जो कहीं भी गरीब है, चाहे वो ड्राइवर है, कुक है, घर के अंदर काम करने वाली मासियाँ हैं, उन सब के भी हकूक होते हैं, उनका भी दिल है, मुख्तलिफ तरीके से इस पे उनकी मदद की जा सकती है। और अमूमन देखिए कि इन सारी जगहों पे हक देने में जो चीज़ रोकती है बंदे को, वो वजह अल्लाह ताला ने आयत के आखिर में रख दी, और वो क्या कि इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। ये है वो बात जो लोगों को उनके हक नहीं देने देती, फ़ख्र। मुख्ताल का लफ्ज़ ख्याल से है, खा या लाम इसका रूट है। खैल किसको कहते हैं? घोड़े को कहते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना ख्याल, अपने ही ख्यालों में रहते हैं, ये बिल्कुल वही लफ्ज़ है जिसको अगर आप पीछे से रिलेट करके देखें तो ख्याल क्या होती है चीज़, कि अपने आप को अपने ख्यालों में बहुत बड़ी चीज़ समझना। घोड़े की चाल के अंदर एक बहुत रौनत होती है, खूबसूरती का एहसास होता है, उसकी तरफ इशारा है कि जो शख्स अपने आप को इतना बड़ा समझे कि उसकी गर्दन ही कभी नीचे ना हो, पाँव ज़मीन पर रखे तो खूब ज़ोर ज़ोर से पटख के मारे, गाड़ी का दरवाज़ा खोले तो ऐसे खोल दे कि जैसे किसी और की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद नहीं है। तो मुख्ताल मगरूर और मुतकब्बिर को कहते हैं। फ़खूर का लफ्ज़ फ़खर से है, फ़खारा। उर्दू में सुना है कभी लफ्ज़? कभी किया तो नहीं फ़खर? हाँ फ़खर है जी। फ़खरा का लफ्ज़ी मानी होता है फट जाना, फटने वाला। तंग कपड़े किसी को पहना देना तो वो कपड़े जैसे चिर 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 करके फटते हैं ना, इस तरह वो शख्स जिसका ज़र्फ़ बड़ा छोटा था लेकिन चीज़ उसको बड़ी मिल गई और फ़ख्र में फटने लगा, हर वक्त अपनी ही तारीफ़ में और अपनी ही खूबियों को बयान करने में जो शख्स मशगूल रहे इसको फ़खूर कहते हैं। अपनी खूबियाँ और कमालात बयान करता रहे, अपनी ही तारीफ़ें करें, जिसको अपनी ज़ुबान में अपने मुँह मियाँ मिठू की बात करते हैं। अल्लाह को ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये बड़े बनते हैं और ये दूसरों का हक नहीं देते। इनको ऐसे लगता है कि हम दूसरों का हक अदा करेंगे तो शायद हम छोटे हो जाएंगे, एक हाथ ज़रा ऊपर रखने वाले, और अल्लाह ताला को ये बात इंतहाई नापसंद है। चलिए आप इसको ज़रा मुख्ताल और फ़खूर को अमली तौर पर देख लें। कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं जो बंदे को वाकई मुख्ताल और फ़खूर बना देते हैं। खूब अकड़े हुए कपड़े, ये कौन से होते हैं? खूब अकड़ अकड़ के अकड़ाते हैं कपड़ों को फिर पहनते हैं। कुछ ड्रेस, कुछ ख़ास चीज़ों का नाम ही ऐसा है कि आप पहन के उसके बाद खुद ही अकड़ जाते हैं। हाँ फिर इस तरह आप देखिए कि कुछ ज़िंदगी गुजारने के रवैये, कुछ तर्ज़ ज़िंदगी, इस चीज़ का बंदा इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं किस गाड़ी से निकलता हूँ, मैं किस ब्रांड का जूता पहनता हूँ, कौन सा पर्स मैंने लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें बंदे को मुख्ताल बनाती हैं। और देखा जाए तो ये तकब्बुर और फ़ख्र है। इंसान अच्छे से अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा खाए, अच्छे से अच्छे घर में रहे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब ये सब कुछ रियाकारी नमूदो नुमाइश के लिए होगा तो ये तकब्बुर हो जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्ने मसूद की रिवायत है कि वो शख्स जहन्नुम में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, और जन्नत में ऐसा शख्स नहीं जा सकेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा। तो किब्र को निकालना है। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि जो मुतकब्बिरीन है क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको चींटियों की शक्ल में मैदान महशर में लाएगा और मखलूक को कहेगा कि इनके ऊपर से गुजरो, यानी जो हशर हो रहा होगा मैदान महशर में लोगों की पेशियाँ होंगी वो मुतकब्बिरीन के ऊपर से होंगी। जो दुनिया में बड़ा बनेगा उसको अल्लाह ताला वहाँ छोटा कर देगा। फिर अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि अच्छा फिर क्या ख्याल है, कपड़े अच्छे ना पहने और ये अच्छे खाने ना खाएं, तो फिर क्या तकब्बुर की डेफिनेशन क्या है? तो एक रावी हैं हज़रत इब्ने मसूद, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। तो लोगों में से एक शख्स ने उठकर कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा तो दिल चाहता है कि मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरा जूता अच्छा हो, तो क्या ये तकब्बुर है? तो आपने फरमाया कि नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, बल्कि तकब्बुर क्या है? आपने फरमाया कि इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला तो खुद खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, तभी तो उसने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई ना, और आप नेचर में देखें तो आपको सारा हुसन मिलेगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आपका अपना दिल चाह रहा है कि मेरे अच्छे कपड़े हो, मेरा अच्छा जूता हो, फितरतन भी कुछ लोगों में अच्छा पहनने का रुझान होता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन तकब्बुर क्या है कि अल किब्रु बत्रुल हक्की व गमतुन्नास, हक को झुटला देना, रद्द कर देना और लोगों को हकीर समझना। ये दो लफ्ज़ अगर आपने समझ लिए तो इंशाल्लाह तकब्बुर की असल हकीकत समझ आएगी कि किसी के सामने हक बात पेश की। अल्लाह का दीन हक है ना, दीन का हर अमल हक है, तो आप कहूँ मैं नहीं मानती, मेरे से नहीं होता ये काम, मैं इतने बड़े अफसर की बीवी, लो अब मैं ये करूँ, अब मैं इतना मसरूफ़ बंदा, मैं नमाज़ पढ़ूँ, यानी हक बात जब सामने आए तो उसको रिजेक्ट कर दे। और देखें कि मुंह से नहीं रिजेक्ट करता इंसान, अमल से रिजेक्ट करता है। हय अल सलाह की आवाज़ आए और बंदा नमाज ना पढ़े, ये हक को झुटलाना है। रमज़ान का महीना आए और इंसान रोज़े ना रखे, ये हक को झुटलाना है। कुरान की दावत मिले और इंसान उस दावत को कबूल ना करे, ये हक को झुटलाना है। और गमदिन नास के अच्छे कपड़े पहने और अब किसी से बात भी नहीं करनी, हाथ नहीं मिलाना किसी गरीब से कि कहीं कपड़े गंदे ना हो जाए। अब अच्छे कपड़े पहन लिए, अब नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनकी क्रीज खराब हो जाएगी, इस्त्री खराब हो जाएगी। ये चीज़ बुरी है। इसी से फिर इंसान जो है वो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। अब यहाँ किब्र और फ़ख्र की बात करने के बाद इसकी भी वजह बताएगी कि ये कौन लोग होते हैं जिनमें ये मुख्ताल और फ़खूर वाली खूबियाँ आती हैं। इसका तذکرہ ہے 37 में कि अल्लसीना यबखलून व यामुरूनन्नास बिलबुखली। ये वो लोग हैं जो खुद भी बुखल करते हैं और दूसरे लोगों को बुखल का हुक्म देते हैं। व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, और छुपाते हैं उसको जो उनको अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। ऐसे लोगों का क्या अंजाम है? वअतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना, हमने काफिरों के लिए रुस्वाकुन अज़ाब तैयार किया हुआ है। कौन से काफिरों की ये बात है? वल्लज़ीन युनफिकून अमवालहुम रियान्नास, और वो लोग जो अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। वला युमिनून बिल्लाही, और अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। वला बिल योमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान नहीं लाते। ये लोग हैं रियाकार। ये मैंने साथ हिस्सा इसलिए पढ़ा कि लिल काफिरीन को आप समझ जाएं कि कुफर के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, लेकिन ये कौन सा दर्जा है? रियाकारी का दर्जा है। यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक है बुखल, और बुखल को हम पीछे बड़ी तफसील से देख चुके कि बंदा वहाँ भी ना खर्च करे जहाँ करने का हक है, यानी वाजिबात पे ना लगाए, शौहर बीवी के ऊपर खर्च ना करे, घर वालों के खाने पीने की बात ना करे, यानी जहाँ भी अल्लाह सुबहान तआला ने कहा है वो खर्च करो वहाँ नहीं करते। इसी तरह हक बात पे नहीं करते, लेकिन जहाँ अपने नाम की बात आती है तो वहाँ लाखों खर्च करते हैं। दुनिया में ऐसे किरदार बहुत सारे हैं। और देखिए, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता। कौन? कि जो फ़ख्र और गुरूर की बीमारी का शिकार है, जिनको दौलत इतनी प्यारी है कि वो एक पैनी तक अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को तैयार नहीं। ज़रा सा खर्च करना पड़ जाए दीन पे तो उनको ऐसे लगता है कि सारे खर्चे यहाँ पे आके टूट गए। दुनिया की बात हो, ज़ाती ज़रूरियात की बात हो, ख्वाहिशात की बात हो, खूब खर्च करेंगे। खाने पीने की बात है, खूब खर्च करेंगे। पहनने की बात है, खूब खर्च करेंगे। बड़ी बड़ी दावतों को पकाने की बात है, खूब खर्च करेंगे। लेकिन जहाँ दीन की बात आएगी या अल्लाह के नाम पे खर्च करना होगा तो वो कहेंगे कि नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। किसी ने शेयर भी किया मेरे साथ, किसी ने अपने घर में कोई दावत रखी, खूब खाने पकाए, यानी बड़े बड़े खाने पकाए। तो वहाँ एक रिवाज था कि जब घर में कोई आए तो उनको कोई गिफ्ट देते हैं लोग ना, जिसको गुड्डी बैग्स बनाते हैं। तो किसी ने उनको कहा कि आप ये जो बनाएंगी तो इसमें आप कोई अच्छी चीज़ डाल दें, कोई कैसेट डाल दें, कोई सीडी डाल दें, कोई बुकलेट डाल दें, तो सदका जारिया होगा। खैर, उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो वो जो साहिबा थी जिन्होंने घर में खाना पकाया था, तो उन्होंने जब वो चीज़ खरीदने जाने लगी तो उनका दिल इतना घुटा हुआ महसूस किया कि उस पे वो सोच रही है कि बस मुझे $1 से ज़्यादा नहीं लगाना। लेकिन 10 डिशेस बनाई हैं, तो उन्होंने उनको बहुत ही अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि देखो, तुमने 10 खाने पकाए हैं ना, इसको भी वो खा के भी खुश हो जाएंगे, तो 8 भी पका लोगी तो खुश होंगे। तुम ऐसा करो कि वो 10 की बजाय 8 डिशेस बनाओ, और वो जो 2 डिशेस पे तुम्हारा खर्च आना था ना, उसको अपने इस $1 में डाल के कुछ ऐसी चीज़ किसी को दे दो जो तुम्हारे लिए सदका जारिया बने। लेकिन अमूमन देखिए कि लोग जो ही दीन की चीज़ पाएंगे सारी किर्स वहाँ करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस ये तो एक फालतू की बात है, ये तो बरकत के लिए करनी है। तो हर बंदा अपने लिए इस चीज़ को एक मेयार बनाए कि मैं अपने नाम पे ज़्यादा खर्च करती हूँ या अल्लाह के नाम पे ज़्यादा खर्च करती हूँ। और यहाँ से आप देखिए कि रियाकारी की बुराई का भी पता चलता है कि दिखावा और रियाकारी कितनी बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये आयत मदीना के यहूद के बारे में नाजिल हुई। ये लोग बहुत मغرور भी थे, इंतहा दर्जे के कंजूस थे, माल खर्च करने में भी बुखल करते थे और इल्म को छुपाते भी थे। हालांकि उनको अपनी किताबों से ये बात पता चल चुकी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे दुनिया में, लेकिन वो दिल के बुखल की वजह से इस बात को आगे नहीं भेजते थे। नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने खुद को भी उस नेमत से महरूम कर दिया और दूसरों को भी दूर कर दिया। ये ऐसी है जैसे आप देखिए कि पाइपलाइंस होते हैं ना, उसमें एक तरफ से पानी डालें तो दूसरी तरफ से निकलना चाहिए। ये एक आम असूल की बात है, उससे वो पाइप भी सही रहता है। लेकिन अगर उस पाइप के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए, पानी भी डल रहा है लेकिन आगे से निकल नहीं रहा, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ही एक कीचड़ की कैफियत होगी। बिल्कुल यही चीज़ दुनिया में माल की भी होनी चाहिए। अल्लाह ताला चाहते एक हाथ से आए और ज़रूरियात पे और वाजिबात पे और जो भी सदका खैरात है या अपनी ज़ाती ज़रूरियात है उस पे खर्च हो जाए। जो लोग माल को रोकने लगते हैं ना, तो समझो उनके दिल में शुख पैदा होता है, जो बुखल का अगला दर्जा है, जिसके नतीजे में फिर इंसान और ही ज़्यादा माल की मोहब्बत का शिकार हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर सुबह के वक्त दो फरिश्ते नाजिल होते हैं, इमेजिन करें आप। इनमें से एक कहता है, ए अल्लाह, भलाई के रास्ते में खर्च करने वाले को अच्छा इवज़ अता फरमा, और दूसरा कहता है, अल्लाह, बखील को मालो दौलत की तबाही से हमकिनार कर दे। ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। सोचिए ज़रा कितनी बड़ी बददुआ सुबह उठ के मिलती है उस शख्स को जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता। अल्लाहुमाती मुमसिकन तलफन, यानी इसका माल तल्फ हो जाए, और जो खर्च करता है तो आती मुनफिकन खलफन, कि अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है इसका माल बाकी रहे। और ये एक किस्म की दुआ है जो फरिश्तों की तरफ से इंसान को मिलती है। फिर इसी तरह हज़रत अस्मा से एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अस्मा, खैर के रास्ते में खर्च किया कर और गिन गिन कर ना दे, वरना अल्लाह भी तुम्हारे हक में गिनना शुरू कर देगा। और इन्फाक से बचने के लिए बहुत ज़्यादा हिफाजत ना बरत, वरना अल्लाह भी हिफाजत करना शुरू कर देगा, और कम अज़ कम तुझसे हो सके तो इसके देने से दरेग ना करो। क्या पता चला कि जो गिन के देता है तो अल्लाह भी उसको गिन के अजर देता है। और अमूमन देखिए कि जो ही अल्लाह के रास्ते में देते हैं फ़ौरन गिनते हैं, कितना सोचा हुआ है, कितना बजट रखा हुआ है। और आम हालात में ख्वाहिशात और शादियों और जहेज और इस तरह कामों में अनलिमिटेड खर्च करते हैं। तो हमारे लिए अमल की बात क्या है कि गिन गिन के नहीं देना, खुले दिल से दिया करें। अल्लाह को वक्त दे तो खुला दे, मत घंटों का हिसाब करें। और अगर माल देते हैं तो खुला दे, अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी स्किल्स लगाते हैं तो खुले दिल से लगाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। एक बड़ी प्यारी रिवायत है और इसको सुन के तो बहुत ही ज़्यादा रग़बत भी आती है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की। तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, अबू हुरैरा इसके रावी हैं, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, सखी यानी जेनरस पर्सन जो होता है अल्लाह से भी करीब है, सोचें, और जन्नत से भी करीब है, और लोगों की नज़रों में भी पसंदीदा है। सच है ना, ऐसे शख्स को लोग हमेशा पसंद करते हैं जिसका हाथ बहुत खुला हो, ख़ास तौर पर गरीब रिश्तेदार तो ऐसे शख्स को बहुत ही पसंद करते हैं। फिर फरमाया, और जहन्नुम की आग से दूर है, होना चाहते हैं ना, तो कितना आसान तरीका है। इसके बरक्स बखील अल्लाह से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, लोगों से भी दूर है, और आग से करीब है। और जाहिल आदमी जो सखावत करता हो और फ़राइज़ को अदा करने और हराम से बचने का एहतमाम करता हो, उस कंजूस से बेहतर है जो इबादत गुजार हो। इसी तरह तिर्मिज़ी की रिवायत अबू सईद से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो आदतें किसी मोमिन में जमा नहीं होती, बुखल और बद अखलाकी। तो इसी की बुनियाद पे हम अपने ईमान को भी देख सकते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें रियाकारी से और दिखावे से बचाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़ी वईद आ गई, और वो क्या कि वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, यानी जो दुनिया वालों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए खर्च करता है ना, उसका असल में अल्लाह पर और आखरत पर ईमान ही नहीं है। कैसे, उसको इस बात का यकीन ही नहीं है कि मुझे इसके बदले में आखरत में कुछ मिलने वाला है। आप देखिए कि दुनिया में देना किसको आसान लगता है, जिसको ये यकीन हो कि मुझे इससे मिलेगा। आप दिन रात कहाँ खर्च करते हैं जहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा होता है ना, यानी आप जितने भी देते हैं, इवन अगर आप घर में एक डिश भी खरीद के लाते हैं, तो एक लम्हे के लिए तो ज़रूर सोचते हैं ना कि जितने पैसे दे रही हूँ कि उतनी वर्थ की चीज़ ला भी रही हूँ कि नहीं। क्यों सेलों में लोग भागते हैं कि ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, पैसे थोड़े देने पड़ रहे हैं। तो जो बंदा दुनिया में खर्च करते वक्त ये सोचता है कि मैं जो दे रहा हूँ उससे मुझे मिल क्या रहा है, तो जब उसको ये यकीन हो जाता है ना कि मैं अल्लाह के पास जो दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, तो कभी भी देने से हाथ नहीं हटेगा। बल्कि इंसान के हाथ से कहीं पैसा गुम जाए, चोरी हो जाए, कोई छीन ले, तो फिर उस वक्त इंसान कहता है कि हाय, मैंने ये अल्लाह के रास्ते में दिया होता, कुछ तो मेरे लिए वहाँ ज़खीरा किया गया होता। और अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल दे इन चीज़ों के लिए। रिवायात बहुत खूबसूरत है, इंशाल्लाह कुछ तो आपको इस बुक में भी मिल जाएंगी, लेकिन दिखावे और रियाकारी से बचने की ज़रूरत है। एक तो नेकियों का दिखावा होता है ना, जिसमें शिर्क है, नमाज़ पढ़ी तो शिर्क के लिए की, दिया तो शिर्क के लिए किया, लेकिन एक दिखावा जो होता है ना, वो दुनिया के माल का भी होता है, जिसको शो ऑफ के मानों में आप ले सकते हैं। इसका शिकार अमूमन ख्वातीन होती हैं, इल्ला माशाल्लाह। इससे भी इज्तनाब करने की ज़रूरत है। जितना पहने खाएं पिएं सिर्फ अपने लिए करें। कोई देख ले खुश हो जाए तारीफ कर दे इस ओके, लेकिन आपकी सारी कोशिश इस नज़र से नहीं होनी चाहिए कि दूसरे इसकी कितनी तारीफ करते हैं। और एक रिवायत में तो रियाकारी को शिरक असगर तक कहा गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में शिरक असगर का डर है। पूछा वो क्या है, तो फरमाया अर्रिया, ये दिखावा है। फरमाया वमई यकुनिश शैतान लहू करीनन फसा अकरीना, और वो बदकिस्मत हो जाए शैतान जिसका साथी हो, और पस वो बहुत ही बुरा साथी है। यहाँ फिर शैतान की बात आ गई कि जो लोग दिखावा करते हैं या लोगों को दिखाने के लिए तो खर्च करते हैं और खुद से नहीं खर्च करते, असल में पीछे शैतान होता है। हम पीछे सूरह बकरा में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि शैतान तुम्हें वादा देता है बुखल का और फकीरी का और फहश कामों का। पहले ये माल जमा कराता है, और जब जमा हो जाता है ना, तो फिर कहता है अब इसको देखो ना, बच्चों की तो खुशियाँ होती हैं, देखो फिर इस मौके पे खर्च नहीं करोगे तो और कब करोगे, और देखो ना फिर घर तो खूबसूरत ही होना चाहिए ना, फिर बच्चों के रिश्ते भी अच्छे आएंगे। ये है फसा करीना, यानी पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से दिल छोटा कराता है, फिर जब माल जमा हो जाता है तो उसको फुहश पे लगाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा शख्स भी बहुत ही बदकिस्मत है कि जो शैतान के चक्कर में आकर गलत काम कर लेता है। और अल्लाह सुबहान तला से दुआ है कि हमें ऐसे लोगों में से ना करे। यहाँ तक हम तिलावत सुनेंगे, और इस आयत को जो भी हमने अभी पढ़ी इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है हमने, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा नेकियों का तस्करा है। तो जब ऐसी आयात हम पढ़ते हैं तो या तो बोर होने लगते हैं, अच्छा ये बातें तो बहुत पढ़ी हुई हैं सुनी हुई हैं, और या फिर हम ये सोच लेते हैं कि ये अहकाम तो टू मच हैं, हमसे नहीं हो सकते, तो इससे बेहतर है कि कुछ ना करो। तो दुआ मांगते हुए तिलावत सुनेंगे कि अल्लाह ताला हमें इन आयात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا